एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चल रहे हैं जिसमें रोमांच है, दोस्ती है, खूब सारी हंसी है
और साथ ही अमेरिकी जंगल की असलियत पर एक बहुत ही पैनी नजर भी।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बिल ब्रायसन की मशहूर किताब ए वॉक इन द वुड्स, रीडिस्कवरिंग अमेरिका ऑन द अपैलेचियन ट्रेल।
जी, ये किताब मतलब सिर्फ एक लंबी पदयात्रा का लेखा जोखा नहीं है। ब्रायसन उस समय अमेरिका लौटे ही थे ब्रिटेन में काफी साल रहने के बाद, तो इस यात्रा के जरिए वो अमेरिका को और शायद खुद को भी फिर से जानने समझने की कोशिश कर रहे थे।
और उनका अंदाज जानकारी और मजाक का ऐसा गजब का मेल,
वही तो कमाल का संतुलन है।
और मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये कि बिल ब्रायसन कोई मतलब कोई प्रोफेशनल माउंटेनियर या एडवेंचरर टाइप नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो तो एक आम लेखक है, अपनी जिज्ञासा, बारीकी से चीजें देखने की आदत और मुश्किल बातों को भी मजेदार तरीके से बताने के हुनर के लिए जाने जाते हैं। जब वो इस सफर पर निकले तो अधेड़ उम्र के थे, थोड़े अनफिट भी, और जंगल के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे।
हाँ, और इसी वजह से कहानी इतनी भरोसेमंद लगती है और मजेदार भी। वो कोई एक्सपर्ट की तरह ज्ञान नहीं दे रहे,
सही,
बल्कि एक उत्सुक, कभी कभी थोड़े हैरान परेशान, लेकिन हमेशा जिज्ञासु साथी की तरह हमें अपने साथ ले चलते हैं। एक आम आदमी का नजरिया है ये, जो प्रकृति की विशालता और उसकी मतलब चुनौतियों का सामना कर रहा है।
तो आज के टाइम में ये कहानी क्यों जरूरी है? क्या ये बस एक पुरानी यात्रा की कहानी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जब हमारी जिंदगियां स्क्रीन और शहरों में मतलब सिमट सी गई हैं, ये किताब हमें याद दिलाती कि प्रकृति से सीधा जुड़ना कैसा होता है। ये दोस्ती की परतें खोलती हैं, हमारी सहन शक्ति की सीमाओं पर सोचने को मजबूर करती है, और अमेरिकी जंगल की जो हालत है उस पर भी सवाल उठा दिए। ये सारे मुद्दे तो आज कह सकते हैं पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं।
और हास्य, मुश्किलों से हंसते हुए निपटना।
हाँ, वो तो सबसे बड़ी बात है।
चलिए तो फिर इस सफर पर चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब अचानक से इतनी लंबी, करीब 3400 किलोमीटर की यात्रा का ख्याल।
हाँ, तो कहानी शुरू होती है ब्रायसन के न्यू हैम्पशायर वाले घर से। वो ब्रिटेन से लौटे ही थे और उन्हें पता चलता है कि उनके घर के पास से ही दुनिया की सबसे लंबी पगडंडियों में से एक अपैलेशियन ट्रेल गुजरती है, जॉर्जिया से मेन तक।
3400 किलोमीटर, बाप रे, सोचने में ही थकान हो जाए। तो क्या बस ऐसे ही तय कर लिया कि चलना है?
हाँ, कुछ कुछ वैसा ही था। मतलब एक अचानक आया विचार, लेकिन फिर उन्होंने इस पर पढ़ना शुरू किया, रिसर्च की।
अच्छा,
भालुओं के हमले, जहरीले सांप, हाइपोथर्मिया, और भी ना जाने क्या क्या खतरे। और ब्रायसन के अपने मजाया अंदाज में कहे तो वो इन सब खतरों के बारे में पढ़कर बुरी तरह डर गए।
यकीन कर सकती हो।
उन्हें लगा कि भाई अकेले जाना तो बिल्कुल ठीक नहीं।
यहीं पर एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, या एंटी हीरो कहें, स्टीफन कैट्स।
बिल्कुल, स्टीफन कैट्स। ब्रायसन ने कई पुराने दोस्तों को पूछा, सबने मना कर दिया सिवाय कैट्स के। वो आयोवा से थे, बहुत पुराने दोस्त। सालों पहले यूरोप में उनकी एक साथ की बैकपैकिंग ट्रिप मतलब बड़ी मशहूर या बदनाम हुई थी।
हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में।
कैट्स उस समय थोड़े मोटे थे, शराब की लत से उभरने की कोशिश में थे, और इस मैराथन हाइक के लिए मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं से भी तैयार नहीं थे।
तो इन दोनों का साथ में तैयारी करना भी एक एडवेंचर ही रहा होगा।
अरे पूछे मत, उनकी तैयारी भी उतनी ही अनुभवहीन और मजेदार थी। वो एक दुकान में जाते हैं और जरूरत से ज्यादा बहुत महंगा और बहुत भारी भरकम सामान खरीद लेते हैं।
टिपिकल बिगिनर्स मिस्टेक।
हाँ, ब्रायसन खुद बताते हैं कि कैसे ऐसी ऐसी चीजें खरीदी जिनकी जरूरत ही नहीं थी या जिनका वजन बहुत ज्यादा था। ये पूरा किस्सा ही दिखाता है कि प्रकृति के बारे में सोचना कितना रोमानी लगता है
और असलियत कितनी अलग होती है।
बिल्कुल, जमीनी हकीकत एकदम अलग।
तो आखिरकार भारी बैग और शायद थोड़ी घबराहट लिए उन्होंने जॉर्जिया के स्प्रिंगर माउंटेन से यात्रा शुरू कर दी। शुरू के दिन कैसे थे? मुश्किल?
बेहद मुश्किल। बैग बहुत भारी, रास्ता लगातार ऊपर नीचे, खड़ी चढ़ाई और मौसम भी ठंडा। ब्रायसन ने शारीरिक तकलीफों का बड़ा मजेदार लेकिन सच्चा वर्णन किया है। मसल्स में भयानक दर्द, पैरों में छाले और वो भूख जो कभी मिटती ही नहीं।
उफ।
उनकी जो शुरुआती उम्मीदें थी वो बहुत जल्दी रोज के संघर्ष और थकान में बदल गई।
और रास्ते में दूसरे हाइकर्स भी मिले होंगे, तरह तरह के लोग।
हाँ, ट्रेल पर अपनी एक अलग दुनिया होती है। कई तरह के लोग मिले, उनमें एक मैरी एलन नाम की महिला भी थी जो मतलब लगातार बोलती रहती थी। ब्राइसन और कैट्स दोनों से बहुत परेशान हो गए थे।
हाँ हाँ, समझ सकती हूँ।
ये छोटे छोटे किरदार ट्रेल की सोशल लाइफ दिखाते हैं और ब्राइसन को अपनी मजेदार टिप्पणियों के लिए मसाला भी देते हैं।
इसके बाद वो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स पहुंचे। सुना है वहां का अनुभव कुछ ज्यादा ही गंभीर था।
हाँ, स्मोकीज में पहुंचकर यात्रा थोड़ी और सीरियस हो जाती है। ब्राइसन यहाँ सिर्फ अपनी मुश्किलों के बारे में नहीं लिखते, बल्कि उस इलाके के इतिहास और पर्यावरण पर भी ध्यान खींचते हैं।
जैसे?
खासकर वो अमेरिकन चेस्टनट पेड़ों के खत्म होने की कहानी बताते हैं। एक फंगस ने, जिसे चेस्टनट ब्लाइट कहते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में इन शानदार पेड़ों की पूरी आबादी को लगभग मिटा दिया। जंगल का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए बदल गया।
कितना दुखद है।
बहुत। और यहीं पर वो एक बर्फीले तूफान में भी फंस गए थे।
दक्षिण में बर्फीला तूफान?
हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए एक जानलेवा अनुभव था। उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की असली परीक्षा हुई वहां। पता चलता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है।
इस सब में कैट्स कैसे थे? उनके लिए तो ये सब और भी मुश्किल रहा होगा।
कैट्स के लिए तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। उनका वजन, फिटनेस की कमी, शायद थोड़ी हिचकिचाहट भी, सफर उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। कई बार वो पीछे रह जाते, थक कर बैठ जाते।
दोस्ती में तनाव आया होगा।
हाँ, ब्राइसन और कैट्स के बीच तनाव भी बढ़ा। दोस्ती की कड़ी परीक्षा हुई और इसी दौरान वो पहली बार ट्रेल का एक हिस्सा छोड़कर सड़क के रास्ते आगे बढ़ते हैं। हाइकिंग की भाषा में इसे येलो ब्लेजिंग कहते हैं।
अच्छा, ये येलो ब्लेजिंग। और फिर वो गैटलिनबर्ग शहर गए, जिसकी ब्राइसन ने खूब आलोचना की है।
हाँ, गैटलिनबर्ग एक टूरिस्ट टाउन। ब्राइसन उसकी बनावटी चमक दमक, भीड़ भाड़, मतलब पूरी तरह कमर्शियल होने की जमकर मजाक की आलोचना करते हैं। वो शहर उस प्रकृति के एकदम उलट था जिसे खोजने वो निकले थे।
यही उन्हें लगा होगा कि पूरा ट्रेल चलना मुश्किल है।
हाँ, शायद यहीं पर उन्हें और कैट्स को पहली बार शिद्दत से लगा कि ये पूरा 3,400 किलोमीटर पैदल चलना उनके बस की बात नहीं। एक तरह का मोह भंग हुआ।
इसके बाद वर्जीनिया का लंबा सफर, उसे लंबी हरी सुरंग कहा है शायद।
बिल्कुल, वर्जीनिया में ट्रेल का सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 500 मील। लंबी हरी सुरंग इसलिए क्योंकि रास्ता घने जंगलों से गुजरता है। नज़ारे ज्यादा बदलते नहीं, थोड़ा नीरस लेकिन ध्यान लगाने जैसा अनुभव।
अकेले भी चले ब्राइसन कुछ समय?
हाँ, कुछ समय अकेले चले, फिर कैट्स दोबारा साथ आ गए। इसी दौरान वो सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया जैसी अजीब जगहों का भी जिक्र करते हैं। वो शहर जिसके नीचे दशकों से कोयले की खदान में आग जल रही है। प्रकृति और इंसान के बीच का अजीब रिश्ता दिखाता है ये।
लेकिन ये सिलसिला भी शायद ज्यादा चला नहीं, वो थक गए।
हाँ बिल्कुल, लगातार चलने की शारीरिक और मानसिक थकान वो हावी हो गई। करीब 870 मील यानी लगभग 1400 किलोमीटर पूरा करने के बाद वो इतने थक गए कि उन्होंने यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया।
यहाँ कहानी का पहला बड़ा हिस्सा खत्म होता है और ये सवाल रह जाता है कि क्या वो लौटेंगे?
सही।
लेकिन वे लौटे। दूसरे भाग में क्या हुआ? क्या अकेले लौटे?
कुछ समय के गैप के बाद ब्राइसन ने अकेले ही न्यू इंग्लैंड में ट्रेल के कुछ हिस्सों पर छोटी छोटी यात्राएं की। कभी कभी परिवार भी साथ होता। इससे उन्हें उत्तरी ट्रेल का मिजाज समझने का मौका मिला। वो हिस्सा ज्यादा पथरीला, ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण था।
और इसी दौरान उन्होंने सरकारी एजेंसियों पर भी लिखा।
हाँ, वो अमेरिकी वन सेवा और राष्ट्रीय उद्यान सेवा के इतिहास, उनके काम करने के तरीकों और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, जैसे संरक्षण और टूरिज्म में बैलेंस बनाना, इन सब पर भी गहराई से सोचते और लिखते हैं।
और फिर आया वो फाइनल अटेम्प्ट मेन में कैट्स के साथ।
हाँ, ब्राइसन को लगा कि कहानी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, एक क्लाइमैक्स तो चाहिए। उन्होंने फिर से कैट्स को फोन किया और हैरानी के बाद कैट्स फिर से तैयार हो गए।
कमाल है कैट्स भी।
हाँ, इस बार उनका लक्ष्य था मेन का कुख्यात 100 माइल वाइल्डनेस। ये प्लैचियन ट्रेल का सबसे मुश्किल, जंगली और अलग थलग हिस्सा माना जाता है। 100 मील तक कोई कस्बा, कोई सड़क नहीं।
बापरे, ये तो सुनने में ही खतरनाक है। कैसा रहा ये अनुभव?
ये उनके सफर का सबसे मुश्किल दौर था। वाकई, लगातार बारिश, घना कीचड़, दलदल, फिसलन भरी जड़ें, चट्टाने और ऊपर से मच्छर और कीड़े मकोड़े, मतलब हालत खराब।
उफ।
उनका सामान खराब होने लगा, वो पूरी तरह भीगे हुए, थके हुए, उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाएं मतलब चरम पर थीं। एक बार तो कैट्स कुछ देर के लिए रास्ता भटककर खो भी गए थे।
अरे, फिर क्या हुआ?
खैर, मिल गए। वो किस्सा भी बाद में हास्यप्रद बन गया, लेकिन हाँ, स्थिति बहुत नाटकीय हो गई थी।
क्या वो अंत में माउंट कैटार्डिन तक पहुंचे, जो ट्रेल का उत्तरी छोर है?
हाँ, वो 100 माइल विल्डरनेस को पार करके माउंट कैटार्डिन के बेस तक पहुंच गए। कैटार्डिन अपलेशन ट्रेल का ऑफिशियल नॉर्थ एंड पॉइंट है। लेकिन
लेकिन
जब वो वहां पहुंचे तो मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। तेज हवाएं, घना कोहरा, बारिश। और कटाडन की जो फाइनल चढ़ाई है वो वैसे भी बहुत मुश्किल और खतरनाक मानी जाती है।
तो उन्होंने क्या किया, चढ़ाई की?
यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ब्राइसन और कैट्स दोनों ने पहाड़ को देखा, मौसम को देखा, अपनी हालत देखी और फिर उन्होंने ऊपर न चढ़ने का फैसला किया।
क्या मतलब, वो वहां तक पहुंचकर भी ऊपर नहीं चढ़े?
हाँ, वो बस वहां खड़े रहे, पहाड़ को देखा और वापस मुड़ गए।
तो एक तरह से असफल रहे, मंजिल पर पहुंचकर भी नहीं पहुंचे।
अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो हाँ, उन्होंने पूरा ट्रेल नहीं किया, शायद कुल रास्ते का करीब 40% ही पूरा किया। लेकिन ब्राइसन इसे असफलता नहीं मानते, ये एक सोचा समझा फैसला था। ये दिखाता है कि यात्रा के अंत तक आते आते उनका नजरिया बदल चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि इस सफर का असली मजा, असली कीमत मंजिल पर झंडा गाड़ने में नहीं
बल्कि
रास्ते के अनुभवों में है।
बिल्कुल,
रास्ते के अनुभव, संघर्ष, सीख, दोस्ती, इन सब में था। विरासत मंजिल नहीं बनी, सफर बन गया।
ये वाकई एक अलग नजरिया है पारंपरिक सफलता की कहानी से हटकर। इस पूरी यात्रा और किताब से फिर कौन से मुख्य विचार या मूल्य सामने आते हैं?
सबसे पहला और मजेदार तो है वो आदर्श बनाम वास्तविकता का टकराव। हम सोचते हैं कि प्रकृति में जाना पड़ा रोमानी होगा, हम उससे जुड़ जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, पीसफुल होगा।
हाँ, और फिर असलियत सामने आती है, थकान, कीड़े मकोड़े, बारिश, गंदगी। ब्राइसन इस अंतर को बड़ी खूबसूरती और हास्य के साथ दिखाते हैं।
और मानवीय सहन शक्ति वाला पहलू, क्या ये कहता है कि हमें सुपर हीरो बनना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब इंसानी जिद और हिम्मत तो दिखाती है, पर साथ ही ये भी बताती है कि हमारी सीमाएं हैं और ये जानना भी जरूरी है कि कब रुकना है, कब हार मान लेना भी ठीक है। सहन शक्ति का मतलब सिर्फ चलते जाना नहीं, अपनी लिमिट्स को समझना और उनका सम्मान करना भी है। ब्राइसन और कैट्स की यात्रा यही दिखाती है।
दोस्ती, वो तो शायद इस किताब का दिल है।
निश्चित रूप से। ब्राइसन और कैट्स का रिश्ता बहुत अजीब है। वो एक दूसरे से छिड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी साथ निभाते हैं। उनकी बातचीत, वो नोकझोंक बहुत मजेदार है।
हाँ,
ये दिखाता है कि कैसे एक साथ मुश्किलें झेलना, बितु के अनुभव शेयर करना दोस्ती को मजबूत कर सकता है और परख भी सकता है, और कैसे हंसी मजाक मुश्किल हालात से निपटने का एक तरीका बन सकता है।
पर्यावरण का संदेश भी काफी स्ट्रांग है इसमें।
हाँ, वो बहुत जरूरी है। ब्राइसन सिर्फ अमेरिकी जंगल की सुंदरता की तारीफ नहीं करते, वो उसकी नाजुकता और उस पर जो खतरे हैं, एसिड रेन, जंगल कटना, प्रदूषण, अमेरिकन चेस्टनट जैसे पेड़ों का गायब होना, इन पर भी ध्यान खींचते हैं।
सीधे उपदेश नहीं देते, लेकिन
नहीं उपदेश नहीं, बस अपने अनुभव और रिसर्च के जरिए वो संरक्षण की जरूरत को बहुत असरदार तरीके से सामने रखते हैं।
और आखिर में वो अपूर्ण उपलब्धि का मूल्य, जो आपने कहा।
हाँ, वो शायद सबसे गहरा सबक है। ब्राइसन दिखाते हैं कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश करना ही अपने आप में बहुत मायने रखता है, भले ही आप अंत तक ना पहुंच पाए। पूरी यात्रा ना कर पाने को वो फेलियर नहीं मानते, बल्कि एक अनुभव, एक सीख मानते हैं। यह हमें सफलता की जो पारंपरिक परिभाषा है उस पर सवाल उठाने को कहता है।
अगर इस लंबी यात्रा में हमें तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हों जिन्होंने कहानी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी मोड़ था स्टीफन कैट्स का इस सफर में शामिल होना। कैट्स के बिना ये किताब शायद इतनी मजेदार और मानवीय नहीं होती।
सही बात है।
उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ ब्राइसन को एक साथी दिया, बल्कि कहानी में हास्य, तनाव और दोस्ती का एक बिल्कुल अलग रंग भर दिया। उनकी अनुभवहीनता और मुश्किलें कहानी को जमीन से जोड़े रखती हैं।
हाँ, दूसरा मोड़,
हिस्सा छोड़ने का फैसला, वो येलो ब्लेजिंग और गैटलिनबर्ग जाना। ये वो पल था जब उन्होंने और कैट्स ने अपनी हकीकत को स्वीकारा कि शायद ये पूरा ट्रेल चलना हमारे बस का नहीं।
रियलिटी चेक।
हाँ बिल्कुल, इसने उनकी यात्रा का फोकस बदल दिया। अब जोर मंजिल पर नहीं, अनुभव पर आ गया।
और तीसरा सबसे नाटकीय मोड, या कहें एंटी क्लाइमैक्टिक मोड,
वही माउंट कटाडिन के शिखर पर ना चढ़ने का अंतिम फैसला। ये एक तरह का एंटी क्लाइमैक्स है, पर यही इस कहानी का असली क्लाइमैक्स भी है। ये जानबूझकर असफलता को चुनना दिखाता है कि उन्होंने यात्रा का असली मतलब समझ लिया था,
कि सफर ही मंजिल है।
हाँ, ये उनके शुरुआती ईगो से ऊपर उठकर एक मैच्योरिटी का प्रतीक है।
इन अनुभवों और मोड़ों से हम आज क्या सीख सकते हैं, मतलब हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक है?
पहला तो यही कि आम लोग भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। ब्राइसन और कैट्स कोई एथलीट नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतना मुश्किल काम चुना। भले ही पूरा नहीं किया, पर उनकी कोशिश ही अपने आप में प्रेरणा है।
कोशिश करना जरूरी है।
बिल्कुल, और मुश्किलों में हंसना। ये किताब दिखाती है कि ह्यूमर, हास्य कैसे सबसे कठिन हालात में भी हमारा सहारा बन सकता है। अपनी तकलीफों पर, अपनी बेवकूफियों पर हंस पाना ये बहुत बड़ी ताकत है।
सही कहा।
दोस्ती की बात करें तो रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, खासकर मुश्किल हालात में। लेकिन एक दूसरे की कमियों को अपनाना, मुश्किल में साथ देना और साथ में हंस पाना, यही दोस्ती को मजबूत बनाता है।
प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या सबक मिलता है?
ये किताब याद दिलाती है कि प्रकृति सुंदर है, भव्य है, पर वो उदासीन भी है, खतरनाक भी हो सकती है। हमें उसका सम्मान करना सीखना चाहिए, उसे जीतने की कोशिश नहीं। प्रकृति से जुड़ना जरूरी है, लेकिन विनम्रता के साथ।
और सफलता की परिभाषा?
हाँ, सफलता की अपनी परिभाषा बनाना। समाज हमें बताता है कि सफल होने का मतलब है लक्ष्य तक पहुंचना, पर यह किताब सिखाती है कि सीखने, अनुभव करने, बदलने और कोशिश करने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी बहुत गहरी सफलता है, भले ही नतीजा वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था।
तो इस सारी बातचीत को अगर हम तीन मुख्य निष्कर्षों में समेटें, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक रूप से देखें तो सबसे गहरी बात यह है कि सच्ची दोस्ती अजीब और मुश्किल हालात में भी टिक सकती है, और साथ में हंसी मजाक और सहनशीलता उसे और गहरा बनाते हैं। ब्राइसन कैट्स का रिश्ता अपनी सारी नोकझोंक के बावजूद यही दिखाता है। ये एक उम्मीद है कि इंसानी जुड़ाव मुश्किलों से बड़ा होता है।
और बौद्धिक स्तर पर?
बौद्धिक स्तर पर सबसे जरूरी बात यह है कि जिसे हम जंगल या प्रकृति कहते हैं, वो सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, वो एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम है जिस पर गंभीर खतरे हैं, प्रदूषण, इंसानी दखल, क्लाइमेट चेंज। ब्राइसन हमें याद दिलाते हैं कि इसे बचाने के लिए सिर्फ नीतियां काफी नहीं, हमें खुद भी जुड़ना होगा, जागरूक होना होगा।
और अंत में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सबके लिए हो।
सबसे प्रैक्टिकल और सबके लिए सबक यह है कि अपूर्णता में भी खूबसूरती और मतलब हो सकता है। जिंदगी में हर लक्ष्य पूरा हो ये जरूरी नहीं। किसी बड़ी चुनौती का सामना करने की हिम्मत दिखाना, रास्ते में सीखना, अपना नजरिया बदलना, ये सब अपने आप में बड़ी उपलब्धियां हैं। हमें अपनी तथाकथित असफलताओं को भी अनुभव के खजाने की तरह देखना चाहिए।
वाकई ए वॉक इन द वुड्स एक ऐसी किताब है जो हंसाती है, सोचने पर मजबूर करती है, प्रकृति के करीब ले जाती है, दोस्ती के मायने समझाती है, और शायद सबसे जरूरी ये याद दिलाती है कि जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं।
बिल्कुल, और इस सफर में थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ी हंसी और बहुत सारा साहस, ये सब चलता है।
ये याद दिलाती है कि दुनिया को देखने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, बस थोड़ी जिज्ञासा और चलने की हिम्मत चाहिए।
सही कहा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।